यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಶಲ್ಯ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ದ್ರವ್ಯ ಶಲ್ಯ ಔರ್ ಭಾವ ಶಲ್ಯ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ हो रही है. भाव शल्य की उत्पत्ति में जो निमित्त भूत कारण होता है वह द्रव्य शल्य है. द्रव्य शल्य के उदय में या द्रव्य शल्य के निमित्त से भाव शल्य की उत्पत्ति होती है. वह भावशल तीन प्रकार की होती है, मायाशल, मिथ्याशल और निदानशल. मायाशल की उत्पत्ति के लिए कषाय का उदय आवश्यक है. मिथ्याशल के शल की उत्पत्ति के लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आवश्यक है और निदान शल्य की उत्पत्ति के लिए दोनों के उदय की आवश्यकता है. यानी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों प्रकार के इन प्रकृतियों का कर्मों का उदय होने पर निदान शल्य की उत्पत्ति हो सकती है. इसके अलावा निदान शल्य के लिए व्रतों का धारण भी आवश्यक है, क्योंकि व्रतादियों के पालन के फलस्वरूप भौतिक सुखों की इच्छा करना निदान शल्य कहलाती है. क्या अपेक्षा करना निदान शल्य में वह वृत्ति भी होता है. मिथ्या शल्य में और माया शल्य में इसमें वृत्ति होता है या नहीं ये पूछते हैं तो वृत्ति हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. शल्य तो शल्य होती है. मरण के काल में जो विकल्प निरंतर पाया जाए उसी का नाम शल्य है. यदि व्रति होता है व्रत के फल स्वरूप कुछ मांग रखता है पाना चाहता है तो वह निदान शल्य की कोटि में आता है. इन तीनों का स्वरूप अलग अलग है. माया शल्य का स्वरूप क्या बताया था? माया कषाय के उदय में कपट के भावों से त्याग धर्म का आचरण करना. त्याग धर्म तो है ही, व्रतादि का धारण यहाँ पर हुआ है, पर उन व्रतों को कपटता के साथ धारण किया है. यानी व्रतों का फल जो वास्तव में होना चाहिए और व्रत जिसके उद्देश्य होते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्रतों का पालन वह नहीं करता, उसको ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए प्रयोग करता है. इसी को शल्य कहा, इसी को कषाय कहा। कषाय जनित शल्य और मिथ्या तो कर्म उदय जनित शल्य, ये दोनों अलग अलग हैं। मिथ्यात्व के उदय में, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में जो शल्य उत्पन्न होती है, उसमें क्या विकल्प होते हैं, इस बात को उसके स्वरूप के अनुकूल समझना चाहिए। मिथ्या शल्य का स्वरूप क्या है? अतत्व रुचि रूप आत्मभाव, अतत्व यानी जो तत्व नहीं है उसको तत्व मानना, उस पर श्रद्धान करना, ये दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण होता है। मिथ्यात्व का जब उदय होता है तो उस प्रकृति का प्रभाव अतत्व श्रद्धारूप प्रभाव होता है। उस कर्म के उदय के कारण जीव जो नकली है उस पर विश्वास करता है। जो भी चीज, जो भी विषय नकली होता है ना, उसी को सच मान बैठता है, उसी को असली मान बैठता है। जैसे शोकेस में रखे हुए फल का समुदाय, उसमें केले भी हैं, उसमें अनार भी हैं, द्राक्षी का गुच्छा भी दिख रहा है और काजू का फल भी दिख रहा है। उनको देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात अभी अभी थाली भर करके रखा है। उसमें विश्वास करना कि ये असली है, नकली में असली की कल्पना करके उस पर ऐसे ही श्रद्धान करना, ये मिथ्यात्व का उदय कहलाता है। अब प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, जब तक हम समीप नहीं गए तब तक तो मानना ठीक है, किंतु पास जाने के बाद भी हाथ से छू करके देखा कि द्राक्षी का गुच्छा लकड़ी का है, ये अनार लकड़ी का है, ये केले का एक डजन केला अनार का है, ये लकड़ी का है। इस प्रकार छू करके देखने के बाद भी यदि वह जानबूझ करके नहीं, ये केला है और मैं इसको बेचूंगा, केले के मूल्य में बेचूंगा और खाने के लिए बेचूंगा, बेच सकता है, लेकिन उनको खाया जा सकता है क्या? बिक सकते हैं, और खरीदने वाले भी दो प्रकार के होते ही हैं, हाँ, असली और नकली। जो खाने के उद्देश्य से खरीदने के लिए आएंगे वो पहले तो छू करके देखेंगे, और खाने के उद्देश्य से खरीदने के लिए जो जाएंगे और छू करके देखना नहीं चाहते वो ऐसे ही खरीद लेंगे। दो प्रकार के खरीदने के लोग भी रहते हैं, तो बेचने वाला भी बेचता है, खाने के लिए बेचता है, खाओ इसको ले जा करके, लेकिन कोई खा नहीं सकता। जब खा नहीं सकता तब जाग जाता है, ये खाने के नहीं है। जब जाग जाता है तो सम्यक दर्शन होता है, नहीं जागता है, ला करके रखता है, खाएंगे आज न कल खाएंगे, घर में ला करके रख दिया और कल तक वो ताज़ा ही दिख रहे हैं, परसों भी ताज़ा दिख रहे हैं और महीने भर रखे तो भी ताज़ा दिख रहे हैं, और फिर ज़्यादा ही विश्वास बढ़ रहा है कि ऐसे अद्भुत केले आए हैं बाजार में आज। हाँ, अद्भुत अद्भुत केले आए हैं, कभी खराब नहीं होते, मुरझाते नहीं हैं, पीले नहीं पड़ते, जैसे जिसका रंग है वैसा ही हमेशा रहता है। लेकिन जब वह खाने की चेष्टा करेगा तो उसमें से एक भी अंगूर निकाल करके नहीं खा सकता। तो वो क्या करता है, वो भी कहता है जिसने मुझे बेचा है वैसा मैं भी बेचने के लिए ही इनको रख दूँ। वो भी बेचने का काम करता है और ये भी बेचने का काम करने के लिए वैसे ही रखता है। तो दोनों खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों नकली रहे, तो ऐसे नकलीपना धर्म में भी चलता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव अतत्व श्रद्धा करता है, नकली को असली मान करके खरीद लेता है, बाद में नकली निकला तो भी उसको बेचने से या रखने से परहेज नहीं करता, इस प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता है। तो होता क्या है, वो अपना जीवन बन जाता है। मैंने आज तक इसी को खरीदा है और बहुत मात्रा में खरीदा, तो फिर नकली कैसे कहूँ किसी से। तो उसको वह उसी रूप में बेचना चाहेगा जिस रूप में खरीदा है, नकली बन करके खरीदा है। खरीदने के लिए भी नकली रहना पड़ता है ना, परीक्षा बुद्धि के बिना खरीदा, नकली खरीदा और नकली को ही बेचना चाहेगा तो नकली बेचना शुरू कर देता है। अब नकली समझ करके भी उसको क्यों बेचते हो, मैं क्या करूं, खरीदा है तो बेचूंगा तो सही, बेचे बिना तो अपना पैसा निकलेगा नहीं, इसलिए बेच रहा है। तो ऐसा होता है, दर्शन मोहनी कर्म के उदय में कोई हम गलत काम करते हैं तो अज्ञान के कारण से करते हैं, हमको पहचान नहीं होती, उस समय में गलत काम कर बैठते हैं। परीक्षा बुद्धि नहीं रहती, उस समय हमारा काम ही गलत हो बैठता है। क्या गलत करता है, तो अंधश्रद्धालु रहता है, इसलिए दर्शन मोहनी कर्म के उदय में अधर्म को धर्म मानता है, अतत्व को तत्व मानता है, रागी देव को देव मान करके उपास्य मान करके पूजा करने लगता है। रागी देव को कुदेव कहते हैं और वीतरागी देव को सच्चे देव कहते हैं। आत्मकल्याण के लिए वीतरागी देव की आवश्यकता होती है, रागी देव हमारा आत्मकल्याण नहीं कर सकता। रागी गुरु, रागी शास्त्र, रागी देव क्या हमारे आत्मकल्याण के मार्ग में, धर्म के उत्पत्ति के प्राप्ति के मार्ग में क्या सहयोग इनका हो सकता है? आत्मा के विकास विकास के क्षेत्र में तो शून्य है ये, इसलिए इनको आयतन की कोटि में नहीं रखा, क्योंकि राग का सद्भाव है उनमें, ये आत्मकल्याण के काम में नहीं आ सकते, इसलिए उसको अनायतन कहा। और जिसको आयतन कहा वो आत्मकल्याण के मार्ग में हमारे लिए सहयोगी उपयोगी हो सकते हैं, आयतन कहलाते हैं, आयतन उपयोग में आ सकते हैं, इसलिए उनको आयतन कहा। आत्मकल्याण जिससे हो सकता हो उसी को आयतन कहा जाता है, और जिनके माध्यम से आत्मकल्याण संभव नहीं वो अनायतन है, अनायतन से जीवन में हानि होती है। अनायतन में आत्मकल्याण भी नहीं होता और सांसारिक सुख सुविधाएं भी उनके माध्यम से हो ये भी संभव नहीं है, किंतु इस विषय में अंधश्रद्धा बहुत होती है कि ये देव मेरे लिए बहुत हित कर सकता है, करता है, किया है या कर सकता है। इस प्रकार का जो विश्वास भीतर से होता है वो परीक्षा बुद्धि के अभाव में, तत्व के विचार या चिंतन के अभाव में इस प्रकार की बुद्धि होती है। तत्व चिंतन करके देखे, उसको परीक्षा की दृष्टिकोण से जरा विचार करके देखे तो उसमें भी वह समर्थ नहीं है जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं हमारे जीवन के लिए प्रदान कर सके। ये सामर्थ्य भी किसी रागी देव के पास नहीं होता, फिर भी उसमें विश्वास करता है जीव। तो इसी को दर्शन मोहिनी का उदय कहते हैं। जो दे नहीं सकता है वह देता है, इस प्रकार का विश्वास ये दर्शन मोहिनी का उदय है। और जो दे नहीं सकता उनसे ज्यादा आशा रखना, आशा कषाय है, ये अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी का उदय है। रागी देव में विश्वास रखना ये किस कर्म का उदय? नहीं, दर्शन मोहिनी का। विश्वास, श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, ये मिथ्यात्व कर्म का उदय, दर्शन मोहिनी का उदय है। और उससे आशा रखना कि मुझे हित करेगा, ये चारित्र मोहिनी का उदय, ये अनंत अनुबंधी का उदय। इस प्रकार हम अज्ञानी भी बनते हैं तो अपने कर्म के उदय में, अंधविश्वासी भी बनते हैं तो अपने कर्म के उदय में, और आशावान भी बनते हैं तो अपने कर्म के उदय में। ठीक है, अपने कर्म के उदय में बनते हैं, यह अपना कर्म का उदय यह कौन सा द्रव्यशैली माना जाएगा? कौन सा द्रव्यशैली दो में से? हाँ, दर्शन मोहिनी में से, द्रव्यशैली में से जो भेद है ना, उसमें से कर्म द्रव्यशैली है। उसमें कर्म द्रव्यशैली में भी दो भेद किया है, उसमें दर्शन मोहिनी आएगा। अंधविश्वास करना ये दर्शन मोहिनी द्रव्यशैली है, कर्म द्रव्यशैली है। और आशा जो होती है कि इस देव, यह देव देता है, मैं लेऊंगा इनसे, इनके ऊपर काफी भरोसा है और ये देंगे, इस प्रकार जो आशा के परिणाम होते हैं ये कषाय परिणाम कहलाते हैं। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म द्रव्यशैली है। ये दोनों ही प्रकार के जो कर्म हैं ये आत्मा से भिन्न है क्या? ये आत्मा के भीतर अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इन्हीं के उदय में हम अंधश्रद्धालु बनते हैं तो दर्शन मोहिनी के उदय से बनते हैं। इन्हीं के उदय में हम यदि आशावान बनते हैं तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में बनते हैं। शेष जो चारित्र कर मोहिनी कर्म हैं, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संज्वलन कषाय, ये शल्य की कोठी में नहीं आते। शल्य की उत्पत्ति में इनका कोई सहयोग नहीं होता। शल्य की उत्पत्ति में ये काम में नहीं आ सकते। शल्य की उत्पत्ति में शल्य के उत्पत्ति के लिए कारणीभूत कर्म चाहिए, वो सामर्थ्य अनंत अनुबंधी और दर्शन मोहिनी के अलावा किसी में नहीं है। यदि अपन ये कहेंगे कि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय भी कषाय है, इसके उदय में भी शल्य की उत्पत्ति होना चाहिए, तो यदि शल्य की उत्पत्ति हो जाए तो फिर सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय में यदि शल्य हो जाए तो सम्यक दर्शन कैसे रहेगा? चौथे गुणस्थान में है, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है, अनंतानुबंधी का उपशमन है। तो उदयागत जो कषाय होती है वही शल्य की उत्पत्ति में कारण बनना चाहिए। तो अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से शल्य की उत्पत्ति हो, संभव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उस अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के साथ दर्शन मोहनी का भी उदय नहीं जो शल्य उत्पन्न करा सके। तो दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन तीन में से शल्य की उत्पत्ति में कारणीभूत दर्शन मोहनी कितने हैं? दो हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व भी हमारे लिए सम्यक्त्व से वंचित रखता है और मिथ्यात्व कर्म भी हमारे लिए सम्यक्त्व से वंचित रखता है, किंतु सम्यक प्रकृति हमारे लिए सम्यक्त्व से वंचित नहीं रखता। सम्यक प्रकृति के उदय में हम कौन से सम्यक दृष्टि रहते हैं? क्षायोपशम सम्यक दृष्टि रहती है। और सम्यक प्रकृति के क्षय में, क्षय होने के बाद हम कौन से सम्यक दृष्टि रहते हैं? क्षायिक रहते हैं। और इनके उसके उपशमन के काल में कौन से सम्यक दृष्टि रहते हैं? तो औपशमिक सम्यक दृष्टि रहते हैं। तो सम्यक प्रकृति देश गाती है, सम्यक्तो का देश गाती है। तो सम्यक्तो धर्म का विनाशक यह नहीं है, देश घाती जरूर है, परंतु सर्वथा उसका घातक नहीं है, इसलिए ये शल्य की कोटि में नहीं आएगा। शल्य की कोटि में तो दो ही आएंगे, मिथ्यात्व कर्म का उदय और सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय, और चारित्र मोहनी में अनंत अनुबंधी एक ही आएगा, एक ही कषाय आएगी। इस तरह से यह व्यवस्था, शल्य की उत्पत्ति की जो व्यवस्था है, द्रव्य के द्वारा ही भाव शल्य की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार व्यवस्था है। अब दर्शन मोहनी के उदय की बात हम कह रहे थे। अंधश्रद्धा स्वयं को होने से शल्य की उत्पत्ति हो सकती है ना? स्वयं को अंधश्रद्धा, किस प्रकृति का उदय चाहिए अंधश्रद्धा के लिए? मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म का उदय। और इच्छा करने के लिए किस कर्म का उदय चाहिए? अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी का उदय। ठीक है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छा करने के लिए लोभ का उदय चाहिए, और कपट भाव करने के लिए माया का उदय चाहिए, और उसकी रक्षा के लिए किसका उदय चाहिए? उसकी रक्षा के लिए, हाँ, अनायतनों की रक्षा के लिए। कोई कह दे ये अनायतन है, आत्मकल्याणकारी नहीं है, तो जीव को अच्छा नहीं लगता, ये किस कषाय का उदय? नहीं मान कषाय का उदय भी हो सकता है, क्रोध कषाय का उदय भी है, ये उससे ज्यादा प्यार है, हाँ, अनायतनों से ज्यादा प्यार है, तो कोई धर्म का उपदेश दे, आत्मकल्याण का उपदेश दे और ये अनायतन है छोड़ो कह दें, तो अच्छा नहीं लगेगा, ये कौन सी कषाय का उदय? बहुत सूक्ष्म है, ये तत्व चिंतन करना चाहिए। कौन सी कषाय का उदय है? तुम क्या कहते, हम अभी तक करते आए हैं, ये कौन सी कषाय? मान कषाय, ये क्रोध कषाय है, जो कह रहा है उसी पर गुस्सा आता है, ये क्या कहता है ऐसा, क्रोध आ सकता है कि नहीं? तो क्रोध कषाय का भी उदय है, और उसके प्रति विशेष स्वाभिमान रखना, ये मान कषाय का उदय। अनायतनों के प्रति विशेष स्वाभिमान, ये किस कषाय का उदय? अनंतानुबंधी मान कषाय का उदय। और अनायतन का उपयोग यानी पालन करते हुए भी व्रत आदि को भी धारण कर लेना, और उन व्रतों का दुरुपयोग करना, भौतिक सुख के लिए दुरुपयोग करना, ये माया कषाय है, ये माया कषाय है। और दुरुपयोग उद्देश्य पूर्वक कर रहा है, कोई ना कोई उसके पीछे ख्याति लाभ पूजा आदि का भाव अवश्य है, इसलिए वह कर रहा है, ये लोभ कषाय है। तो इस तरह से अनंतानुबंधी कषाय चार प्रकार से कार्य करती है, धर्म के घात में उसके चार हाथ हैं, चार हाथों से वह धर्म का घात करती रहती है अनंतानुबंधी कषाय। तो ये कर्म द्रव्य शैली है, अनंतानुबंधी का उदय कर्म द्रव्य शैली है, द्रव्य शैली का भी भेद है, क्योंकि वह पुद्गल है, उन पुद्गल कर्मों के उदय में जीव अपने परिणामों को उस प्रकार से करता है। मिथ्यात्व के उदय में अतत्व श्रद्धा रूप और अनंतानुबंधी के उदय में इच्छा रूप, मान रूप, माया रूप और क्रोध रूप परिणाम करता है। शल्य कपट भाव से त्याग धर्म का आचरण करने का मतलब ये है कि बाहर से तो हम दिख रहे हैं कि धर्मात्मा है, जैसे हमने महाव्रत धारण कर लिया, ऊपर से तो हम लगेंगे कि महाव्रति हैं या अनुवृत्ति हैं, नहीं कोई भी अनुवृत्त के लिए भी शल्य निषेध है ना, निश्शल्यो वृत्ति, वृत्ति यानी अनुवृत्ति और महाव्रति, दोनों वृत्तियों को शल्य से रहित होना चाहिए। तो ऊपर से तो अनुवृत्त लिए हुए से लगेंगे, परंतु भाव अनुवृत्त नहीं है, तो किस माया कषाय का उदय आया, करो विचार, करो विचार। हाँ बिल्कुल, व्रतों को लिया आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए था, यही उदाहरण है उसका, आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए था, आत्म कल्याण के विषय को तो उपेक्षित किया, आत्म कल्याण तो बाद में देखेंगे, हमको तो ये पात ख्याति पाना है, प्रसिद्धि पाना है, या कोई तपस्या के फलस्वरूप कोई विषय इंद्रिय विषय पाना है, ये मायाचारी हुई कि नहीं हुई। आत्मकल्याण के रास्ते से च्युत होने का नाम ही मायाचार है। ये व्रत किस लिए थे, आत्मकल्याण के लिए, किसके लिए उपयोग किया, ख्याति लाभ पूजा के लिए, फिर लोगों से हम पूजवा भी रहे हैं ना, तो लोग पूजा किस दृष्टि से करते हैं, गुणों की दृष्टि से पूजा करते हैं क्या, दोष की दृष्टि से, और अपने पास है क्या, दोष है, अपने पास क्या है, दोष है, और पूजवा रहे हैं, ये मायाचारी नहीं, ये व्रतों का दुरुपयोग नहीं। तो यहां पर इसको माया क्यों कहा, जो व्रत जिस उद्देश्य से थे उस उद्देश्य से उनका पालन नहीं किया। भावव्रत होते तो माया कषाय होती नहीं थी। अब द्रव्य व्रत बचे हैं, माया कषाय आती ही द्रव्यव्रत बचता है, भावव्रत चला जाता है। इन व्रतों के पुण्य के फल स्वरूप कोई कामना जगी तो द्रव्यव्रत बचता है, भावव्रत चला जाता है। इन व्रतों के धारण के फल स्वरूप हमने कोई ख्याति की अपेक्षा कर ली तो भावव्रत चले जाते हैं, द्रव्यव्रत बचते हैं। जैसे एक उदाहरण और दे दूं, सुनो सुनो, एक उदाहरण देता हूं उसको भी सुन लो। दशलक्षण में अपन ने चार पांच उपास कर लिए। पूछा गया क्यों किया आपने, तो दूसरा कर रहा था इसलिए हमने किया। दूसरा क्यों कर रहा था पूछा तुमने, नहीं उनको अच्छा लग रहा था, क्या अच्छा लग रहा था पूछा। हाँ, समाज में नाम हो रहा है या हमारा एक रिकॉर्ड बन रहा है कि हमने इस वर्ष, गए साल तो दो ही उपास किया था हमने, इस साल पांच किया, रिकॉर्ड बनाना है। तो रिकॉर्ड बनाने के भाव, ये आत्मकल्याण के भाव नहीं है। और किया कराया सब श्रम, सब पसीना बेकार गया, एक भी कर्म की निर्जरा, जरा भी रंच मात्र भी कर्म की निर्जरा उससे नहीं होती। बाह्य उद्देश्य नहीं आना चाहिए, बाह्य टारगेट बन गया तो भावव्रत नहीं रहेंगे। और फिर भी लोग कहेंगे ना, वाय वाय कहेंगे, मिलता तो है वो प्रशंसा, तो प्रशंसा मिलने पर अच्छा भी लगता है मन को कि हमने वो पांच उपास किया इसलिए सब लोग ऐसा तपस्वी और सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, तो पूजा तो मिल रही है, इसी का नाम ख्याति लाभ पूजा है। इसमें द्रव्यव्रत यानी पांच उपवास, ये द्रव्यव्रत है, भावव्रत नहीं है। यहां क्यों नहीं है, टारगेट में कामना है, टारगेट में प्रसिद्धि है, हैं? नहीं, ये सब भावों का खेल है। देखो, आप कितना भी उपास कर लो, ऐसा नहीं कि हम बहुत उपास कर रहे हैं इसलिए ख्यातिला पूजा वाले हैं, नहीं, भावों का खेल है ये सब। आप किस उद्देश्य टारगेट में क्या रखे हैं इस पर डिपेंड करेगा। टारगेट ठीक है तो सब ठीक है, टारगेट गलत हो गया तो सब किया कराया सब मिट्टी में मिल गया। खड़े खड़े तपस्या की, सामायिक किया कितने घंटे तक, पांच पांच छः छः बीस बीस छत्तीस छत्तीस घंटे तक खड़े करके, खड़े होकर के तपस्या की, परंतु अपने भाव अपने को पता तो रहते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, इससे कर्म की निर्जरा चाहते हैं या कुछ रिकॉर्ड चाहते हैं बहुत कठिन भाव व्रतों को पालन करना बहुत कठिन है। द्रव्य व्रतों को पालन करना कोई भी करता है, कोई भी कर सकता है, आसान है। भाव व्रतों के लिए निर्मोही होना पड़ता है, निष्प्रह होना पड़ता है, पर से उपेक्षित होना पड़ता है, पर की उपेक्षा होती है यहाँ निरंतर। छेड़ाला में क्या कहा, ज्ञानी के छन्माय त्रिगुप्त ते सहज तरे थे, क्यों लिख दिया, और सारे आगम में यही लिखा है, ज्ञानी क्षण भर में असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करता है, अज्ञानी जो करोड़ भवों में करता है, करोड़ भव में अज्ञानी जो निर्जरा करता है, ज्ञानी क्षण भर में करता है, एक मिनट में। ये क्यों लिख दिया, ये भाव व्रतों की महिमा है। वहां द्रव्य व्रत है और वो द्रव्य व्रत के साथ कौन सी निर्जरा होती है, सविपाक निर्जरा होती है कि अविपाक, नहीं सकाम निर्जरा होती है कि अकाम, अकाम निर्जरा होती है, अकाम अकाम निर्जरा होती है, अविपाक निर्जरा नहीं होती, अकाम निर्जरा होती है। कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सयो। क्या लिखा ये? हम अकाम निर्जरा के तप को अनंत बार किया है। इस जीव ने एक भव में नहीं, दो भव में नहीं, करोड़ों भव में तप भी धारण किया तो द्रव्य तप किया, भाव तप नहीं किया। भाव व्रतों को ग्रहण करके व्रतों का पालन नहीं किया, द्रव्य व्रतों को धारण करके खूब कठिन तपस्या की, परिश्रम किया, सताया आत्मा को और शरीर को, लेकिन प्रसिद्धि के लिए, रिकॉर्ड के लिए। तो भाव व्रतों का घात उससे होता है। ये देखो, रक्त कोई दान का वस्तु नहीं है, दान की वस्तु पवित्र होती है। दान की वस्तु चार ही बताया, उसमें रक्त कहाँ है बताओ? आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास दान, इसमें रक्त कहाँ आता है? तो रक्त के सामने दान शब्द मत जोड़ो, वो दान का वस्तु नहीं है, इसलिए दान शब्द जोड़ना ही नहीं चाहिए। हो सकता है वो एक भौतिक उपकार है किसी का, परंतु दान की कोटी में नहीं आता और वो धर्म भी नहीं है। जब दान की कोटी में आएगा तो उसको धर्म भी कह सकते, धर्म अलग वस्तु है, धर्म और दान में अंतर नहीं, परंतु परोपकार अलग वस्तु है। कोई मर रहा है, आपने रक्त दे दिया, इसका मतलब धर्म किया ऐसा नहीं, परोपकार किया। पर रक्त के सामने दान शब्द लगाना छोड़ दो, रक्तोपकार किया ऐसा कहो। दान शब्द को दूषित मत करो, पवित्र है वो धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। क्या? कोई नहीं आता इसलिए जोड़ दिया गया है। देखो ये क्या मायाचारी नहीं? व्रतों को, शब्दों को लेकर के जो हम बाह्य काम चला लेते हैं, यही तो माया कशा है, इसी को कपट कहा है। अब दान नहीं कहते तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। तो दान यह शब्द कितना प्रभाव करता है लोगों पर, कितनी शक्ति है उसमें। दान कहते ही धर्म बुद्धि आती है, और दे रहा है क्या? रक्त। और धर्म बुद्धि से ही देता है, लेकिन धर्म में उसको देने की चीज नहीं कहा, क्योंकि मांस देते हो क्या? मांस देने की चीज नहीं, बॉडी को डोनेट करते हैं, नेत्र डोनेट करते हैं, ये सब धर्म क्षेत्र की बातें नहीं हैं, ये सभी कर्म निर्जरा की बातें नहीं हैं, ये आत्म कल्याण की बातें नहीं हैं, इनसे निर्जरा नहीं होती, इसलिए ये धर्म की कोटि में नहीं है। जिनसे निर्जरा होती है वो धर्म के कोटि में। वो रक्तदान देना नहीं देना ये प्रश्न नहीं है, परंतु वो दान की वस्तु नहीं है ये समझ लेना चाहिए। रक्त देते हैं, उपकार करते हैं, वो अलग बात है, वो लौकिक क्षेत्र में की जाने वाली एक क्रिया हो सकती है, परंतु उसको धर्म की कोटि में नहीं लेना चाहिए, और क्योंकि धर्म की वस्तु वह नहीं है। सुदान में दो प्रकार के दान होते हैं, सुदान और कुदान। कुदान में वो वस्तु आती हैं जिनको देना नहीं चाहिए उसको दे दिया, तो वो कुदान की वस्तु है, और सुदान वह है जिसको देना चाहिए उसको दे रहे हैं, वो सुदान की वस्तु है। जैसे आहार दान दिया किसको दिया? सुपात्रों में दिया, और उसको भी कुपात्रों में देने के लिए कहा नहीं, पात्र की भी परीक्षा करने के लिए बताया। सुपात्रों में दान दिया जाता है। कैसे दान दिया जाता है, कौन से दान दिया जाता है? आहार, औषधि, उपकरण और आवास, आवास दान दिया जाता है। इस दान की महिमा अपरंपार है, लेकिन कुदान की महिमा अपरंपार है क्या? ये तो शास्त्रों में कहीं इसका नामो निशान नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं है। फिर से प्रश्न करना। हाँ ठीक, हाँ नहीं, प्रश्न समझ में नहीं है, भाव तक हम नहीं गए। हाँ देखो, ये तो इतना तो समझ में आ गया कि ये सभी धार्मिक क्षेत्र के बातें नहीं है, इतना तो समझ लिया आपने। अब परोपकार कर रहे हैं तो विवेक से करो। देखो देखो, विवेक से करो कहा ना, उसमें क्या विचार करोगे? उसमें ये विचार करना चाहिए। अब क्या विचार करना चाहिए ये भी हमको ही बताना पड़ेगा। अब उसमें देखो, आप स्वजन परजन दुर्जन सज्जन ये विचार करोगे कि नहीं? हाँ, दान देने में जब कुपात्र सुपात्र का विचार किया जाता है, तो फिर इन मामलों में जो परोपकार के मामले बाह्य सांसारिक हैं, उसमें भी विवेक का मतलब क्या है? क्या उसमें दुर्जन सज्जन का विचार नहीं करोगे? शिविर लगा करके तुमने दे दिया, और उसको एक चोर भी आ गया, उपचार करके चला गया, चोरी पर चला गया वो, और तो ये शिविर किस काम का? इसको लोकोपकार समझोगे? ये तो पाप का कार्य है, ये करुणादान भी नहीं है, करुणादान की कोटि में भी नहीं। करुणादान वह चीज है जो तात्कालिक रूप से जीव दुखी है, उसके दुख को देख नहीं सक रहे हैं आप, इसलिए कुछ हेल्प किया, सामने मर रहा है, तड़प रहा है, उसको खड़ा कर दिया, वो क्षणिक है। तात्कालीन दुख को दूर करना ये करुणा दान है। आपने गौशाला खुलवा दी, गौशाला में दान दे दिया, ये करुणा दान है, ये आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। कत्ल खाने में पशु जा रहे हैं, आप देख करके रह नहीं सकेंगे, सम्यक दृष्टि है तो उसको बचाना चाहेंगे, उसकी रक्षा करना चाहेंगे, उसको छुड़वाना चाहेंगे, गौशाला में भेजना चाहेंगे, ये सम्यक दृष्टि का करुणादान। करुणादान धर्म की कोटि में, परंतु शिविर लगा करके रक्तदान करना, और जिस किसी प्रकार से वो कहां किसको जा रहा है कोई मालूम नहीं है, ये अविवेक का दान हो जाएगा, अविवेक उपकार हो जाएगा, दान तो नहीं। ये उपकार भी अविवेक पूर्ण हो गया तो उसका क्या कर्म बंद नहीं होगा? क्या उसको हम परोपकार समझे? क्या विवेक पूर्ण परोपकार उसको समझ सकते हैं? नहीं। तो यही विवेक अपने को रखना चाहिए, कौन सा उचित और कौन सा अनुचित, कहां देना और कहां नहीं देना। अब वो नाम से क्या, चाहे शिविर हो चाहे वो व्यक्तिगत किसी को हम दे रहे हों, समयानुकूल विचार करना चाहिए, उससे अपने को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि परोपकार करना एक धर्म ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ पाबंदियां हैं, मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को ख्याल में रख करके करते हैं तो कोई बात नहीं। इसी मर्यादा को ख्याल में रखने के लिए शास्त्रों में करुणादान का विधान है, ये अलग है। करुणादान पात्रदान नहीं है, वो उसमें सुपात्र कुपात्र का विचार नहीं है, जो चार प्रकार के दान आप देते हैं उसमें सुपात्र कुपात्र का विचार है, आहार दान, औषधि दान और उपकरण दान, आवास दान, ये सुपात्रों को देने के लिए कहा है। इसमें भी आप अविवेक से देते हैं तो उसका फल भी स्वयं को ही मिलता है। उस बुरे फल से बचने के लिए सुपात्र को ही दान देना, ये आगम में विवेक का मार्ग दिखाया गया है। सुपात्र को पात्र कौन, तो उनका लक्षण भी बता दिया। सुपात्र वह कहलाता है जिनके पास कम से कम सम्यक दर्शन हो, चारित्र ना हो, ज्ञान ना हो, कोई बात नहीं, कम से कम आयतनों का उपासक हो और स्वयं आत्म कल्याण को जानता हो कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है इसलिए आयतनों की उपासना करना है, सेवा करना है, तत्व की श्रद्धा करना है, मुझे तत्वज्ञानी बनना है, मुझे धर्म की बातों को सुनना है, इसके प्रति जो लगाव है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस सम्यक दृष्टि के पास चारित्र नहीं होता है फिर भी इसको कहते हैं, ये शाकाहारी होता है, आठ मूल गुण का पालन करता है और सम्यक दृष्टि रहता है, इसी को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। पाक्षिक श्रावक को जगन सुपात्र कहा है, जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती माना जाता है, ये जगन सुपात्र है। और जो प्रतिमाधारी होता है वो मध्यम सुपात्र है। जो पंचम गुणस्थान में रहते हैं, उपचार महावृत हो या अनुवृत हो, उनको मध्यम सुपात्र कहा है। और जो महावृति हो, मुनि हो, वो उत्तम सुपात्र, वो उत्तम पद है। उत्तम पद है, मंगल पद है, शरण जान योग्य पद है, इसलिए उत्तम उस पात्र को उत्तम सुपात्र कहा। चत्तारी मंगलम में आता है ना, साधु परमेष्टि दिगंबर मुनि चार उत्तम में आते हैं, साहू लोकोत्तमा, साधु परमेष्टि लोकोत्तम हैं। तो उसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन परमेष्टि आते हैं, दिगंबर मुनि जो जिनके पास रत्नत्रय तीनों हैं। दान क्यों दिया जाता है, गुणों को देखकर दान दिया जाता है, गुणों के विकास के लिए, गुणों के उपकार के लिए। गुण ही मार्ग हैं, मोक्ष मार्ग हैं, इन गुणों के उपकार के लिए दान दिया जाता है। गुण क्या है, तो रत्नत्रय ही गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों जहां होते हैं उनको उत्तम सुपात्र कहते हैं। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक देश चारित्र, चारित्र में आंशिक चारित्र जहां होता है उनको हम मध्यम सुपात्र कहते हैं। और चारित्र बिल्कुल नहीं होता लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान तो होता है, वो भी सहधर्मी माना जाता है, वह भी संघ परिवार से बाहर नहीं है, संघ परिवार के कोटि में आता है, उसको भी दान देने को कहा। वो जगन्य सुपात्र है, जो पाक्षिक श्रावक होता है वो जगन्य सुपात्र। और जो पात्र नहीं है वो कौन, तो तीसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, यानी जिनके पास एक भी गुण नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में से एक भी गुण जिसके पास नहीं है वो सब कुपात्र या अपात्र की कोटि में जाते हैं। कुपात्र सुनना, कुपात्र में भाव व्रत नहीं होते, केवल द्रव्य व्रत होते हैं। देखो कुपात्र का लक्षण ध्यान में रखना, इसको चिंतन करना। कुपात्र का क्या लक्षण, द्रव्य व्रत होते हैं लेकिन भाव व्रत नहीं रहते। और सुपात्र में द्रव्य व्रत भी होते हैं, भाव व्रत भी होते हैं। और अपात्र में न द्रव्य व्रत होते हैं, न भाव व्रत होते हैं, न सम्यक दर्शन होता है, न ज्ञान होता है, न चारित्र होता है, गुण ही नहीं होता है। तो दो में दान का विधान नहीं है, कुपात्र में और अपात्र में दान का विधान नहीं है। दान का विधान एक में, तीन में से एक में है, सुपात्र, कुपात्र, अपात्र। दान का विधान किस में है? सुपात्र में दान दिया जाता है। सुपात्र में दिया गया दान, अल्प दान भी वटवृक्ष के समान फलदायक होता है, महान होता है, किसी भी गति में महान सुखी रहता है और अंत में मोक्ष फल पाता है। सुपात्र में दान देने वाला आत्म कल्याण करता है। सुपात्र में दान देने वाला जीव मिथ्यात्व सहित भी हो तो उसका कल्याण होता है। मिथ्यात्व सहित भी हो उसका कल्याण होता है, लेकिन जिसमें दान दिया जा रहा है, जिसको दान दिया जा रहा है, वो सुपात्र होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, मध्यम सुपात्र होना चाहिए या तो उत्तम सुपात्र होना चाहिए। उसका फल बहुत मीठा, अमृत के समान फल फलता है। सुपात्र दान से मिथ्या दृष्टि जीव का भी कल्याण होता है और सम्यक दृष्टि जीव का तो होता ही है। तीन प्रकार के पात्र हैं, जघन पात्र, मध्यम पात्र, उत्तम पात्र। देखना, जघन पात्र दाता भी है और पात्र भी है, दोनों ही। ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, दाता भी है और पात्र भी है। मध्यम सुपात्र दाता भी है और पात्र भी। उत्तम पात्र मात्र पात्र है, दाता नहीं, आहार आदि की अपेक्षा, चार दान की अपेक्षा से नहीं, वो चार दान की अपेक्षा से हम यहां पर पात्रता घटित कर रहे हैं ना। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान, ये दान के वस्तु हैं, इसको उत्तम पात्र नहीं कर सकता। इन चार प्रकार के वस्तुओं का दान उत्तम पात्र करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस अपेक्षा से वो दाता नहीं है, इन चार के अपेक्षा से वो दाता नहीं है। ज्ञान देते हैं, ये बात अलग है, ज्ञान दान। आत्मा को जगाते हैं, मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं, रत्नत्रय गुणों का दान प्रदान करते हैं, ये बात अलग है। परंतु इन चार प्रकार के दान में ये नहीं है ना। अरहंत भगवान भी ज्ञान ही तो देते हैं, और शेष परमिष्टि क्या करते हैं, वो भी तो ज्ञान दान देते हैं, परंतु वो ज्ञान दान चार में से है क्या? नहीं है। उपकरण दान रखा है वहां, जिससे ज्ञान बढ़ता है वो वस्तु देना, यानी शास्त्र, शास्त्र देना, ये उपकरण दान है। श्रावक को ज्ञान दान दानी कहा है कि उपकरण दानी? क्या कहोगे श्रावक को? उपकरण दानी है, ज्ञान दानी नहीं। ज्ञान दानी तो मुनि, आप क्या देते हैं मुनि को? उपकरण दे देते हैं, और उसी उपकरण को लेकर पढ़ करके आपको क्या देते हैं? वो ज्ञान देते हैं। मुनि शास्त्र में से ज्ञान देते हैं और मुनि को आप शास्त्र देते हैं। इस प्रकार का आदान प्रदान परस्पर में चलता है। हाँ, निवेदन करता यानी भिक्षाम दे ही कहता। यहां मांगने पर मिलता है, लेकिन हम लोगों को मांगने पर नहीं मिलता, मांगे बिना मिलता। कौन उदार है? श्रावक उदार है मुनि की अपेक्षा से। श्रावक महान है। देखो हम ज्ञान देने के लिए आपको मांगना पड़ता है और हम आहार के लिए निकलते हैं तो मांगे बिना आप खड़े रहते हैं पड़गाने के लिए। याचना होती है क्या? नहीं, मुनि याचना से नहीं निकलते। और याचना से निकलने लग जाए तो आप देना बंद कर देंगे क्योंकि आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपका धर्म, आपकी सभ्यता बिगड़ जाती है। मांगने वाले साधु नहीं और नहीं मांगने वाले ही साधु। साधु में मांग नहीं होती, ऐसा आदर्श है जिन धर्म जिसमें मांग समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, वो है साधु वेश। और मांगते नहीं है इसलिए आप पड़गाते हैं। और रास्ते में जाते जाते साधु दिख जाए तो आप कहते हैं अत्र तिष्ट तिष्ट तत्र न, तिकड़ जाऊ ना का, अत्र तिष्ट तिष्ट अत्र यानी यहां, संस्कृत शब्द है वो, अत्र यानी यहां, हमारे घर के सामने रुको रुको हम देंगे। तो आप कितने उत्सुक हैं, कितने भावुक हैं। साधु गुजर रहे हैं और आप रोक रहे हैं। साधु चाहते नहीं और नहीं चाहने वाले को भी आप रोकना चाहते हैं, यही तो महानता है। हाँ, देखो जहां सम्यक दर्शन और ज्ञान, विवेक ज्ञान नहीं होता उसकी चर्चा ही यहां नहीं होती। यहां पर उसकी चर्चा है जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास सम्यक दर्शन है, उसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए उपदेश दिया जाता है। हाँ, ऐसा सम्यक दर्शन जो धारण करना चाहता है उसके लिए भी उपदेश होता है, परंतु उसका भी निवेदन हो तो उपदेश, निवेदन के बिना उपदेश नहीं होता। निवेदन कौन करता है ये भी प्रश्न है। जो आत्मकल्याण चाहता है वही उपदेश के लिए निवेदन करता है, बाकी की यहां चर्चा ही नहीं होती। वो क्या है और कैसे हैं, क्या समझना चाहिए, इन बातों से क्या मतलब है, आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता अपनी है, यहां हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम मिथ्यात्वी हैं तो हे भगवान हमारे लिए मिथ्यात्व कैसे छोड़ना चाहिए, ये निवेदन हुआ। फिर भगवान बोलते हैं जैन धर्म जैन मार्ग ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, धारो इसे साहस के साथ धारो, पवित्र है, निर्मल है, फिल्टर है, फिल्टर पेट्रोल, विमान में बैठना है पेट्रोल कैसा चाहिए, ऐसा पेट्रोल चाहिए, जैन धर्म का पेट्रोल चाहिए। आत्मकल्याण करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके सुपात्र बनना है, सुपात्र की कोटि में आना है। जगन सुपात्र भी बन जाए तो आप दाता भी हैं और पात्र भी। मध्यम सुपात्र बन जाए, दाता भी हैं पात्र भी। उसमें आरिका को छोड़ो, ऐलक को छोड़ो, छुल्लक को छोड़ो, क्योंकि परिग्रह मुक्त हैं इसलिए वस्तु दान स्वतः स्वतः की वस्तु का दान नहीं दे सकते, उनको छोड़ो। बाकी प्रतिमाधारी वो भी पंचम गुणस्थानवर्ती मध्यम सुपात्र, ये मध्यम पात्र है, सुपात्र है। मुनि उत्तम सुपात्र, मुनि सर्वोपरि है, मुनि तो गुरु की कोटि में है, मुनि तो हमारे आराध्य हैं, मुनि तो हमारे जीवन के प्राण हैं, मुनि ही हमारे साक्षात जिन धर्म हैं, मुनि ही हमारे साक्षात मार्ग हैं, मुनि ही हमारे धर्म हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिना हमारा धर्म नहीं पलता। अगर मुनि ना होते तो आप किसको दान देते, और दान आपका धर्म है। किसको दोगे? सुपात्र का अभाव है तो किसको दान दोगे? तो धर्म डूब गया आपका, आपका धर्म डूब गया क्या नहीं होने से, सुपात्र न होने से, मुनि न होने से। अगर धरती पर मुनि नहीं है तो श्रावक धर्म भी नहीं है, दान तीर्थ प्रवृत्त होगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति थी, मुनि थे लेकिन दाता भी थे, दाताओं में विवेक नहीं था। दान तीर्थ की प्रवृत्ति तब तक नहीं हुई जब तक विवेक नहीं जगा। श्रेयांश राजा और आदिनाथ भगवान मुनि थे, सामने सुपात्र दिख रहे हैं लेकिन दाता में विवेक नहीं है, कैसा दान दिया जाए ये ज्ञान नहीं है, तो इसलिए दान तीर्थ दान धर्म जन्म ही नहीं ले रहा है। देखो, दान तीर्थ का अभाव तब तक रहा जब तक एक आदर्श ज्ञानी दाता सामने नहीं आया, और मुनि तो आए थे, आदर्श मुनि सामने थे लेकिन आदर्श दाता ज्ञान पूर्वक सामने नहीं आया, विवेक पूर्वक सामने नहीं आया, इसलिए दान तीर्थ अटका हुआ था, जन्म नहीं ले रहा था। समय हो गया जिनवाने। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जोशी तलवानी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी जय वंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।